यज्ञ का सारा इतिहास, यज्ञ का सारा साहित्य लिखने का वरदान किसे प्राप्त हुआ था? क्यों और कैसे? शास्त्र लिखे, क्या किया? वो ठीक करने के लिए, अच्छा। तो उन्होंने जो शास्त्र पहले लिखे थे तो अभी ठीक करना था इसके लिए, अच्छा। और आज्ञा का पालन किया था। तो बाबा ने रात्रि क्लास के बाद एक बार सभी से कहा कि कल सुबह तक एक पत्र लिखना है जिसमें ये लिखना है कि परमपिता परमात्मा साकार ब्रह्मात्मन में अवतरित होकर नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ऐसा पत्र एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में प्रेसिडेंट के लिए लिखना है और कल सुबह लेके आओ। कौन कौन लिखेगा? तो हाथ खड़े करने को, उठाने के लिए कहा। तो बहुत सारे लोग थे, पांच लोगों ने हाथ उठाया, उसमें से जगदीश भाई भी एक थे। तो ये पांच लोग जैसे ही कमरे में गए तो बत्ती लाइट चली गई। उसमें से एक जो था एक जनरल मैनेजर था, दूसरा जो था वो सांसद, तीसरा जो था वो कहीं का अध्यक्ष, चौथा जो था वो कहीं का अधीक्षक सुपरिटेंडेंट, और पांचवे जगदीश भाई। तो जाते ही लाइट चली गई तो सबने सोचा बाबा को थोड़ी इतना याद रहता है, उम्र भी तो हो गई है ना, देख लेंगे। तो जगदीश भाई ने कहा कि नहीं, मुझे तो लिखना है, पर लिखेंगे कैसे? तो उनके पास विश्व रतन दादा की दी हुई एक टॉर्च थी, वो टॉर्च से कोशिश की लिखने की, पर इतना कम प्रकाश था उसका कि वो लिख नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा बाहर खिड़की से स्ट्रीट लाइट, सोचा अब यहां चला जाऊं। सुबह क्लास चालू होता था, सुबह 4 से 4:30 योग, 4:30 बजे मुरली चालू होती थी। तो वो गए और पहले तो हिंदी में लिखा, एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश की शैली थोड़ी अलग है। तो वो करते 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 3:30 बज गए और उनको ये संकल्प था कि मुझे पहली बार कहा हुआ है, ऐसा था, ऐसा कार्य पहली बार दिया हुआ है तो मुझे करना ही है किसी भी हाल में। तो सुबह 3:30 बजे जब वो ऊपर आ रहे थे सीढ़ी से, तब तक ये लोग उठ गए थे। इन्होंने सोचा क्या है, ये तो बाबा को याद भी नहीं रहता है और ये बात तो बोल देंगे ना अगर पूछा तो, कि लाइट थी नहीं तो लिखेंगे कैसे, वो तो इतना सीरियसली लेने की कोई बात ही नहीं। तो जब ये ऊपर से आ रहे थे, वो नीचे से, वो निकल रहे थे और ये ऊपर आ रहे थे, तो 3:30 बजे। तो फिर योग हुआ, योग के बाद मुरली चली, सबको लगा बाबा पूछेंगे, बाबा ने पूछा ही नहीं, तो खुश हो गए, देखा हमने पहले ही बोला था कि बाबा को तो याद रहता नहीं। तो मुरली भी पूरी हो गई, उसके बाद में सब चले गए। बाबा ने कहा आज पिकनिक जाएंगे, पिकनिक पे गए, वहां पे भी नहीं पूछा, पिकनिक भी पूरी हुई फिर भी नहीं पूछा, फिर वापिस आए, तब फिर लास्ट में पूछा कि कल कहा था कि लेटर लिखने को दिया था वो किस किस ने लिखा है। तो सबने कहा जब हमने तो नहीं लिखा, मतलब एक्चुअली जगदीश भाई को जैसे शर्म आ गई, उन्होंने अपने अनुभव लिखा है सुनाया जो है कि मुझे शर्मिंदा हो गया मैं, होना चाहिए उनको। तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है। तो बाबा ने बोला सुनाओ क्या लिखा है। तो उन्होंने सुना है और उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई बहुत चमत्कारिक लेख तो था नहीं, थोड़ा बहुत लिखता था कि जो भाई दूसरों को थोड़ा समझ में आ जाए, कोई अनुभव भी नहीं था ज्यादा बहुत लिखने का। वो जब सुनाया उसके बाद बाबा ने उनको 2 वरदान दिए। पहला, आज से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सारा साहित्य तुम लिखोगे। एक, यह ईश्वरीय ज्ञान विश्व के सामने जब पेश करना रहेगा उसके प्रमुख प्रवक्ता स्पोक्समैन आप होंगे। तो ये वरदान दिया गया। शिक्षक एक, गाइड एक, पुरुषार्थ का साथी एक, पुरुषार्थ का समय एक, श्रीमत एक, पढ़ाई एक, कर्तव्य एक, सबको दिए हुए टाइटल्स एक, सबका श्रीमत एक, संकल्प एक, फिर भी नंबर वार 15 बातें, 16 बातें बताइए टोटल। स्थान एक, इसी स्थान पे हुआ ना, तो इतने सारी एक ही बातें थी, परंतु फिर भी नंबर वार हो गया। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है, बाबा ने क्या देखा आज? कमल भाई ने आज क्या देखा? बाबा ने क्षमा और परवाने की बात कही है। देखा क्या? लगन और स्नेह को देखकर बाबा हर्षित हो रहे, सब परवाने समान आ रहे हैं क्षमा के ऊपर। परवाने समान आ रहे हैं कहां पर? क्षमा के ऊपर। परवाने और क्षमा, इनके बीच में ये क्या प्यार है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। जितने उर्दू के शायर, कवि, गजल लिखने वाले, गीतकार, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने क्षमा और परवाने के विषय में नहीं लिखा है। हर एक ने लिखा ही है कुछ ना कुछ, परंतु ये बेबूज, जिसको कहते अबूज, समझ में नहीं आया अभी तक, अनसुलझा हुआ, ये समझा भी नहीं है आज तक ये प्यार क्या है। इस पर संशोधन अभी भी जारी है, कुछ संशोधन निकला है। एक्चुअली उनको जो प्यार होता है परवानों को, वो चंद्रमा की रोशनी से ज्यादा होता है या सूर्य की रोशनी से ज्यादा। यहाँ वो भ्रमित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, इसके लिए घूमते रहते, समझ में नहीं आता है उनको क्या हो रहा है, विक्षिप्तता आ जाती है उनमें, एक इंसेनिटी, पागलपन, और उसके वजह से वो एक्चुअली तलाश में होते हैं। उनको लगता है ये सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश है, तो उसके वजह से वहां वो गुम हो जाते, गुमराह हो जाते हैं, और वहां फिर मर जाते हैं। बाबा कह रहे हैं क्षमा, और ये है सब परवाने। इसके लिए बाबा को भी इस महफिल में आना पड़ता है मिलन मनाने के लिए, क्योंकि उनको क्या है, मिलन की लगन है, मिलन की लगन है। क्यों? क्योंकि ये मिलन कैसा है वीरबाला माता जी, ये मिलन कैसा है? प्यारा है, न्यारा है, वंडरफुल है, साधारण बात नहीं है, एग्जाम्पल है, अमूल्य है, महान है, बहुत 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 प्यारा है, नैनों का मिलन है, ये मुलाकात मधुर मुलाकात है, हर एक बाप के दिल का दीपक है, नैनों का नूर है, दिल के दुलारे, ऐसा ये मिलन है। इतनी उसकी महिमा गाई है बाबा ने, कि चारों ओर एक ही धुन है। वाह वाह, सबके मुख से एक ही आवाज निकल रही है, मधुर आवाज, मधुर गीत, एक ही मधुर गीत निकल रहा है, मेरा बाबा मीठा बाबा। हर एक के मस्तक पर क्या है, शकल, शकल में क्या है, सुख की, खुशी की लहर, और मस्तक पर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, जैसे ये अचानक की लॉटरी है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा मिलन हो सकता है। ये कोई कम बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो हर एक की शक्ल में, हाँ ये तो अनुभव की बात है, पर बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि रियल अनुभव हो जाए, ये अनुभव, ये भाग्य की बात है, रियल अनुभव हो जाए। बाप भी अव्यक्त मिलन सबको करा रहा है, अनुभव करा रहा है। इस समय अव्यक्त मिलन है, ये कोई स्थूल मिलन नहीं है, साकार मिलन जैसा नहीं है ये। वैसे साकार और सम्मुख मिल रहे हैं वो दूसरी बात है, परंतु ये उस तरह का मिलन नहीं है, ये थोड़ा दूसरे प्रकार का मिलन है, अव्यक्त मिलन है। इसमें अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो अव्यक्ति मिलन का बाप दादा अनुभव करा रहे हैं, और होमवर्क है सदा करते रहो ये मिलन, ये अनुभव दिल में बार बार जैसे कि स्वरूप दिखाई दे। ये मिलन दिल में समाया हुआ है, ये मिलन जैसे दिल में छप गया है, जब चाहो जहां चाहो इस सीन को इमर्ज करो तो क्या हो जाएगा, सुख की फीलिंग आएगी। तो क्षमा और परवाने, परवाने आए हैं, कैसे आए हैं, लगन से आए हैं क्षमा के ऊपर। तो बाबा ने क्या देखा, पुरुषार्थ की रफ्तार, हर एक यथाशक्ति मंजिल का तक पहुंचने का संकल्प लिए हुए। संकल्प एक ही है सबका, मंजिल भी एक ही है, सहज मार्ग एक ही है, सहयोगी स्वरूप एक ही है, गाइड एक ही है, पुरुषार्थ का साथी एक ही है, शिक्षक एक ही है, शिक्षा एक ही है, श्रीमत एक ही है, समय एक ही है, स्थान एक ही है। ऐसा नहीं फर्स्ट नंबर और 16,000 का लास्ट अलग अलग नहीं, स्पेशल ट्यूशन किसी के लिए नहीं है, श्रीमत भी सबके लिए एक है। एक जगह श्रीमत कहा, एक जगह शिक्षा कहा, दोनों में क्या अंतर है? शिक्षा एक, श्रीमत एक। श्रीमत गुरु की और शिक्षा है टीचर की, और शिक्षा कनिष्ठ बनाने वाली है। शिक्षाएं बहुत सारी है, शिक्षाओं में बहुत सारी बातें आ सकती है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में था ना, ज्ञान की परिभाषा, ये ज्ञान है, आत्मा का परिचय, बाप का परिचय और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये है ज्ञान, इसको ज्ञान कहा था ना। शिक्षाएं बहुत सारी है, श्रीमत कोई विशेष जिसको फॉलो करना है, जिसमें मर्यादा है, जो आचरण से संबंधित है, वो सारी श्रीमती, या दूसरे अर्थों में दोनों एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द है दोनों भी, शिक्षाएं कहो श्रीमत धारणा की बात है, ऐसा कह सकते हैं। हिंदी के शब्द है, कई जगह अर्थ एक ही लगते ऊपर से, पर अंदर जाओ तो अलग अलग अर्थ है फिर बहुत सारे। तो ये और कितनी और कौन सी चीजें रह गई है, ये सारी चीजें एक है। हाँ, उसके बाद कुल एक, वंश एक, वर्षा एक, कर्तव्य विश्व कल्याण का एक, टाइटल एक, कौन कौन से टाइटल, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान MS, त्रिकालदर्शी TK, जानी जाननहार JJ, और फिर चौथा मास्टर नॉलेजफुल MK। तो अपने नाम के आगे ऐसी डिग्री लगा देना, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है माता है, ऐसी डिग्री नाम के आगे लगा देना तो थोड़ा सा वजन आ जाएगा। लोगों को भी लगा, और लिख देना नीचे वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। हाँ, वीर बाला माता ये लिख देना आप, MS मास्टर सर्वशक्तिमान, वो मत लिखना मास्टर सर्वशक्ति, खाली MS, JJ, TK और मास्टर नॉलेजफुल MK, और नीचे वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सोचेगा बहुत कोई बड़ा है भाई ये तो। तो टाइटल्स चार, सबको एक ही टाइटल है, और 16 बातें हैं टोटल, और एक 17वीं बात सेकंड पेज पर है, वो कौन सी, जो बाबा का ही नाम है। बाबा के तीन नाम बताए यहाँ, तो एक तो गाइड एक ही है, नहीं त्रिकालदर्शी वो तो टाइटल में आ गया, चार टाइटल है, नहीं एक 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 क्या है, सहारा, सबका सहारा एक ही है, परंतु जिनका वजन बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल ओबेसिटी, आध्यात्मिक मोटापन, उनको सहारा एक है परंतु सहारा ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें एक है, उसके बाद भी नंबर वार हो रहे हैं, उसके कारणों के ऊपर आज की मुरली है। ये तो बाबा ने 16-17 कारण एक बताए, और अभी दूसरे 25 बताओ कि जो एक ही है पर फिर भी अलग अलग हो रहा है। स्थान के लिए बहुत अच्छी बात बताई, स्थान सबका एक ही है, क्या एक ही है? यहाँ मधुबन है, बाहर तो मधुबन नहीं है फिर? अच्छा, परमधाम वाला स्थान, अच्छा। और शिवानंद भाई, स्थान कौन सा, स्थान कैसे एक हो सकता है बताओ?
गीता पाठ
तो सब थोड़ी दिल तक पर है,
गीता पाठ है, क्लास तो एक ही है ना?
क्लास नहीं, क्लास नहीं चल रहा है, स्थान एक कैसे है? क्लास नहीं, स्थान बताओ।
सबका ओरिजिनल होम तो मधुबन ही है।
मधुबन कोई एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन नहीं है, कोई एक भौगोलिक व्यवस्था नहीं है कि ये मधुबन। मधुबन की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, हर वो स्थान जहाँ पर ईश्वरीय महावाक्यों का पठन पाठन पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, हर वो स्थान जहाँ मतलब मुरली पड़ी जाती है वो मधुबन है, हर वो स्थान जहाँ कोई बाबा की याद में है वो मधुबन है। मधुबन के अर्थ ही दो है ना, मधु और वैराग, जहाँ कहीं पर भी वो है वो हर स्थान मधुबन है। केवल भौगोलिक व्यवस्था नहीं है ये मधुबन कि यहाँ आ गए मतलब मधुबन में है, यहाँ से जाओ तो मधुबन से निकल गए, ऐसा नहीं है, कितना इतना स्थूल नहीं है मधुबन में। तो जिसके मन में मधुबन है वही मधुबन है, जो बाबा की याद में है, जो परवाने हैं ईश्वरीय मिलन के लिए, जो प्यासे हैं, जिनके मन बुद्धि चित्त में केवल बाबा और मुरली और मधुबन और ज्ञान है, वो हर व्यक्ति हर वो आत्मा मधुबन में ही है। तो मधुबन की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, और मधुबन में जाने के लिए मधुबन का जो गेट है वहां पे एक नोटिस लिखा हुआ है। कौन सा नोटिस लिखा हुआ है? अंदर प्रवेश करने से पहले अपनी पहचान सुरक्षार्थ भाई को बताना है, लिखा है ना वहां सुरक्षार्थ। इस यज्ञ का सुरक्षार्थ भाई भगवान ही है एक तो, और अपनी पहचान बताना है, उसके बाद ही अंदर जा सकते हो। अपनी पहचान अर्थात टाइटल, अपनी पहचान अर्थात मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा और उसके गुण क्या, पुरुषार्थ नोटिस लगा हुआ है, देखा है ना। अपनी पहचान सुरक्षार्थ भाई को बताना है, उसके बाद ही अलाउड है अंदर परिसर में, आवासीय परिसर में जाने के लिए, कोई भी नहीं जा सकता इसमें। तो ये तो हो गया स्थान, पुरुषार्थ का समय और पुरुषार्थ का साथी। पुरुषार्थ का साथी देखो, वो पुरुषार्थ में भी साथी है, और पुरुषार्थ का समय सबके लिए एक है, कर्तव्य सबके लिए एक है। ये तो हो गया 15 और ये 16 और 17 बातें हैं टोटल। इसके अलावा और क्या क्या एक ही है? सुबह से चालू करो अमृत वेले से रात तक। अच्छा, सबकी ड्रेस एक जैसी है, ठीक है चलो। और
सबकी बोली एक जैसी,
सबकी बोली एक जैसी है, भाषा जो है सबकी लगभग सेम ही है, अलौकिक भाषा है ब्राह्मणों की, सादी भाषा नहीं है। हमारे मन में संकल्प आया है, कितनी अलौकिकता है इसमें, मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं, संकल्प आया है। भाई साहब कहाँ है? रेस्ट में है, ये अलौकिक भाषा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा, भाषा में ही अलौकिकता है, शरीर छोड़ दिया तो हाँ, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं करता है संसार में। साधु संत योगी तपस्वी महात्मा ऐसा नहीं बात करते कि वो आत्मा कहाँ है, ये आत्मा का क्या हुआ, ये हिसाब किताब है, बीमार पड़ गया तो हिसाब किताब है। इस तरह की जो भाषा है ना, ये ब्राह्मणों की भाषा है स्पेशल। तो भाषा भी एक, ड्रेस भी एक, और क्या क्या एक,
दिनचर्या,
दिनचर्या दिनचर्या भी एक, ट्रैफिक कंट्रोल लक्ष्य तो हो गया, मंजिल बोल दिया बाबा ने, मंजिल और मार्ग और संकल्प उसमें आ गया। मुरली एक ही जो बाबा ने जिसके लिए शिक्षा या श्रीमद दूसरे शब्द है, पर मुरली सबके लिए एक है। मुरली में क्या क्या, वरदान एक ही है सबके लिए, धारणा के लिए सार भी और वरदान भी और स्लोगन भी और महावाक्य भी, सारी मुरली और गीत भी एक ही है। प्रीफिक्स बी के वो भी एक ही है, नाम सबका। और ब्रह्मा वो वंश तो मुरली में आ गया, और सबका एक वंश, एक कुल और वर्षा वंश आ गया मुरली में। दूसरा बैच, धारणाएं और भोजन, किसी किसी का भोजन स्पेशल भी होगा,
है तो ब्रह्मा भोजन
है, ब्रह्मा भोजन ही, फिर भी चलो ओवरऑल सबका ब्रह्मा भोजन ही है, वो भी एक ब्रह्मा भोजन एक। और विठल भाई यात्रा भोजन एक ही है कि अलग अलग देते हो सब, अलग सबको सेवा भी सबकी एक। तो लक्ष्मी नारायण भाई ड्रेस भी सबको एक ही सिलाते हो कि अलग अलग सिलाते हो, थोड़ा अच्छा वाला किसी को तो ड्रेस हो गया। और क्या क्वेश्चन, वो मुरली में सब आ गया, मुरली में जो कुछ है सब कुछ एक।
कर्तव्य
तो मुरली में बोल दिया, उसके अलावा, उसके अलावा अमृत वेले का वो समय में आ गया, फिर भी अमृत वेले का योग, योग एक ही योग आ जाएगा वहां पे। सेवाएं भी एक ही है, एक रीति से, कर्तव्य अलग सेवा अलग, तो सेवाएं भी एक। अमृत वेले का योग, विश्व को जो सकाश देने की जो भावना है, शुभ भावना शुभ कामना है हरेक में है, ऐसा शायद ही कोई ब्राह्मण है जिसमें कोई बदले की भावना है या चाहता है कि इसका कल्याण न हो, हरेक चाहता है कि हरेक का कल्याण हो जाए। सब अच्छा बाबा एक बाप भी एक, सबका बाबा एक, और बाप के दिल में भी दिन रात बच्चे ही बच्चे हैं। बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता, बाप को बच्चों के बिना सुना सुना लगता है, चैन नहीं आती है, बेचैनी होती है, बड़ा ही सुनसान सा लगता है, गमगीन अवस्था रहती है उसकी, बहुत उदास बाबा इधर जब आता है और जब सब माताओं की चतुराई और माताओं का इन्वेंशन और माताओं की तकनीक तरकीब या क्या तरकीबें नहीं युक्तियां तरकीबें तरीके जब देखता है तो वो भी एंजॉय करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है जब दोनों हाथ सब उठाते हैं तो रूहानी सर्जन एक, वो तो फिर अभी बहुत सारा आ जाएगा बाप के साथ, उसके जितने टाइटल है पूरा बाढ़ आ जाएगी फिर तो उसका, वो गार्डनर बागवान हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी एक। और झंडा ध्वज एक ही है ना सर सेंटर पर कि अलग अलग है, एक ही ध्वज है सब सेंटर पर। ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल के गीत एक ही है, दिनचर्या एक ही है, भोग भोग के गीत हाँ, कोई कोई सेंटर पे कुछ कुछ दूसरे बजाते हैं, संदेशी वतन में जा, इधर तीन दूसरे बजाते हैं, उधर संदेशी वतन में जा, इधर अमृत वेला शुद्ध पवन है, उधर आई रे प्रभात ले बाबा के साथ, या फिर निंदिया लेकर आई, चित्र सबके से। अरे ये देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, ओम शांति जो टाइटल है जो एक दूसरे को बोलते हैं, ओम शांति, उस दिन निर्वेर भाई जी का क्लास था ना उसमें बोल रहे थे ओम शांति की, जैसे यहाँ पर समुन्दर है जिसको देखो वो ओम शांति बोल रहा है, ओम शांति का जैसे समुन्दर यहाँ लहरा रहा है। तो चित्र सारे जो प्रदर्शनी का सेट है वो भी एक महामंत्र, मन मना भाव एक ही महामंत्र है वो भी एक। और समझाने के तरीके पर एक ही ज्ञान समझाते, लगभग एक ही शैली है, शैली एक ही है समझाने की जो है वो लगभग एक ही है। और भी कुछ है, लक्ष्य तो मुरली में आ गया, हट्टी हट्टी तो स्थान में आ गया वैसे भी, पर हाँ फिर भी हट्टी एक ही है, सबको इधर ही आना है, एक ही दुकान है शॉप, वही दुकान एक ही है लास्ट, इधर ही है स्थान। और यज्ञ एक ही है और अभी है, संगम युग भी एक ही है, वो समय में आ गया वैसे, पर एक ही है वो अब है। सबसे पावरफुल पॉइंट, सबकी युद्ध भी एक ही से है, सबका शत्रु भी एक ही है, देखो एक ही सबका शत्रु एक ही है, हर एक का अलग अलग नहीं है, इधर सबका एक ही शत्रु है। और वो शत्रु ऐसा है कि हर दिन हर घंटे में हर मिनट में अपने रूप बदलता है, और जितना आगे बढ़ो पुरुषार्थ में उसका रूप और सूक्ष्म होते जाता है, जितना ज्ञानी बनो और वो भी ज्ञानी बनता जाता है।
हाँ पंडित बोलते हैं ना उसको, तो हमला किया था फोर्स की ड्रेस में पहन के।
अच्छा, तो वो बहुत चतुर है। सबका धर्म एक, ब्राह्मण धर्म, कुल धर्म, राज्य तो बाबा ने कहा इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, राशि एक ही। अच्छा चलो, राशि भी एक ही है, जन्म पत्री सभी ब्राह्मणों की एक मुरली है, पूरी अव्यक्त वाणी इसके ऊपर, ब्राह्मणों की जन्म पत्री एक ही है, जन्म कब हुआ, तिथि, तारीख क्या क्या थी, सब कुछ है उसमें, 79 की कोई मुरली है। और अच्छा, गति सतगति दाता, वही बाबा का टाइटल में आ गया वो। हाँ, ये एक सेपरेट पॉइंट है, सभी का बर्थडे शिवरात्रि एक ही, पावरफुल पॉइंट है ये तो। तो इतना सब एक होने के बाद भी अब भगवान को भी आश्चर्य है क्या। नंबर आर क्यूब, जब सबको इतना एक ही दे रहा हूं मैं, किसी की स्पेशल लास्ट हो या फर्स्ट हो, सबको सेम, कोई स्पेशल ट्यूशन नहीं है किसी को, पर फिर भी नंबर वार है। उसके दो कारण, पहला कारण वजन बढ़ जाना, वेट, वेट गेन, ओबेसिटी, ओवर वेट। दूसरा कारण वेस्ट। तो सबसे पहले कारण पे आएंगे, संसार में मोटापा क्यों होता है, मोटापा क्या है, संसार शरीर का, पहले तो शरीर का सोचना पड़ेगा, उसके बाद में आत्मा का। पहले तो शरीर का मोटापा क्या है, शरीर का मोटापा क्यों होता है, इटियोलॉजी जिसको कहते हैं, फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स, लक्षण क्या क्या है, फिर उसका डायग्नोसिस, निदान कैसे होता है, और उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले शरीर का मोटापा क्या है,
तली हुई चीजें
नहीं, वो कारण में आ गया, क्या है डेफिनेशन। उसको BMI से कैलकुलेट करते है, बोन बॉडी मास इंडेक्स से, हाइट और वेट के हिसाब से होता है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। वो अगर 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट चालू होता है, और फिर 30 के बाद में फिर ओबेसिटी चालू होती है। तो वो तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है, पर वजन ज्यादा हो जा, जितना चाहिए उससे ज्यादा, उसको कहेंगे ओबेसिटी। एक कारण क्या क्या है, ज्यादा खाना, भोजन पेटू, और एक तो सबसे पहला तो खान पान, दूसरा दिनचर्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम पसंद जीवन, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो पता है ना, वो ऐसा मोटा आदमी दिखाया है लेटा हुआ और टीवी देख रहा है और बहुत सारा खाने का सामने है और खा रहा है लेटे लेटे ही, प्लेट पे ही थाली। तो उसको काउच पोटैटो कहा जाता है। हाँ, तो वो मतलब दिनचर्या कैसी है, जिसमें कुछ चलना फिरना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, स्थिर जीवन यापन करना, एक तो वो सबसे महत्वपूर्ण कारण। दूसरा कारण है खानपान, खानपान में तला हुआ खाना, जंक फूड खाना, और खाते ही रहना, बार बार खाते रहना, नया नया खाते रहना, बहुत ज्यादा शौक खाने का, खाने के लिए खाना, जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जीना, नहीं वो दूसरा है, अभी उसमें आएंगे हम। तो ये खान पान में, फिर और एक कारण, और एक्सरसाइज ना करना, एक्सरसाइज नहीं करना, जॉगिंग नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, स्विमिंग नहीं करना, वो सारा ही आ जाएगा उसमें, कुछ भी नहीं करना, ये सब बस बैठे रहना। उसके बाद में कुछ कॉजेस होते हैं, वो जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटरी, आनुवंशिक कारण होते हैं कुछ, कि जिसके वजह से वो मतलब व्यक्ति तो एकदम कुछ भी नहीं खाता है लगभग, फिर भी माता पिता या कोई घर में होगा, वहाँ विरासत में मोटापा प्राप्त हुआ है उनको, धरोहर। तो वो भी एक कारण होता है। कुछ कुछ कारण होते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से मोटापा होता है, कुछ इंडोक्राइनोलॉजी बीमारी, कुछ कारण जो होते हैं मोटापा के, क्या कहा, हाँ साइड इफेक्ट, कुछ बहुत सारी ऐसे ड्रग्स है कि किसी और चीज के लिए चालू करो, माइग्रेन के लिए चालू करो तो मोटापा होना चालू हो जाता है। थायराइड की बीमारी ऐसी है जिसमें वजन बढ़ना चालू होता है। तो ये बहुत सारे दूसरे कारण है।
श्रापित हो जाता है,
श्रापित मेडिकल भाषा में श्राप एक्सेप्ट नहीं करता मेडिसिन।
तो एक मोटी बहन हो, चल नहीं पाते थे, उसके पिताजी कितना करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, बाद में वो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास लेके गया, हिम्मतजीम करके दो एक जन्म पहले लेके गया, बोला इसके जो शैली थे ना
अब वो हेरिडिटरी में आ जाएगा, उसकी ये स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है फिर। चलो ठीक, वो भी एक है। तो ये हो गया उसका क्लिनिक। अच्छा, मोटे व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके लक्षण क्या क्या, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या, तकलीफें होती है उसको, चलने में थोड़ा सांस फूलता है, और उसको बाकी बीमारियां आनी चालू होती, डायबिटीज जल्दी होगा, बीपी जल्दी होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल आएगा, और वो साथ साथ सारी बीमारियां आएगी। एक तो बीमारियां नहीं, और दूसरा ये सारी बीमारियां, सही बीमारियों की जड़, और क्या क्या तकलीफ क्या होगी आउटसाइड, उठने बैठने में तकलीफ, सुस्ती रहेगी, नहीं कोई कोई एक्टिव भी रहते हैं, चलो सुस्ती रह सकती है, पर और नींद भी ज्यादा आती है लोगों को, रात में नींद कम करते दिन में नींद आती रहती है उनको, ना नींद का प्रॉब्लम होता है उसको, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं ओएसए, कि जिसमें पेशेंट रात में नींद करना, सांस लेना ही भूल जाता है, और फिर रात भर मतलब उसको नींद नहीं आती है, बीच बीच में इसके लिए मशीन लगानी पड़ती है, उसकी पैप मशीन, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी अपने आप में वो मोटे लोगों में होती है वो बीमारी, और दिन भर सोते रहते हैं, पांच मिनट में सो गए अभी बस, मतलब अभी हाथ धोया, अभी खाना खाते भी सो जाते, अभी हाथ धोया, अभी हाथ ऐसा रखा है और सो गए, पानी टपक रहा है, हमने देखा है पानी टपक रहा है और सो गए, इतनी फास्ट फटाफट नींद, उठे हो तो फिर से उठ जाएंगे। कई सारी बहने भी है और भाई भी है जो इस तरह से है, तो वो एक, और आज की मुरली से वो दौड़ नहीं सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, कहीं एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, साथ लेना पड़ेगा किसी का हाथ पकड़ के, सीट पर सेट नहीं हो पाएंगे, चलो बाबा ने वो भी है, दो लोगों की सीट अकेले को लगेगी, एक पेशेंट बीच में आया था, इतना मोटा था, इतना मोटा, उसको भर्ती किया तो बोला इधर नहीं होगा मुझे, आप घर पे ही सारा ट्रीटमेंट, तो घर पे लेके गए, उसके दो बेड थे ऐसे, और उसका एक लग बना था, दो बेड मिला के एक बेड था उसका, इधर ही अमाउंट में, तो ये सब, और फिर ट्रीटमेंट अभी मोटापे का, पहले तो एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, एरोबिक्स करो, डाइट करो, डाइटिंग करो, परहेज करो, तेल वाली चीजें नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, घी नहीं खाओ, बार बार नहीं खाओ, टोली कम करो, मीठा कम खाओ, और घी घी बंद, सैलेड खाओ, अच्छा वो क्या नहीं खाओ पहले, तो फिर क्या खाओ, सैलेड खाओ, फ्रूट्स, भोजन थोड़ा कम करो, क्वांटिटी टोटल ओवरऑल, वो एक, तो ये हो गया वो खाना पीना। अभी आ जाओ आत्मा के ऊपर, अभी आत्मा का भी वजन बढ़ गया है, इसके लिए आत्मिक रोग उसको हो गए, आत्मा भी भार महसूस कर रही है, और ये जो बीमारी, जैसे वो बीमारी है, सारी बीमारियां उसको ठीक कर दो सारी बीमारियों का निवारण हो जाएगा, वैसे इसको भी ठीक कर दो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आत्मा भारी है, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। वजन, वजन बढ़ने के बाबा ने कारण बताए हैं, सड़ी हुई चीजें और दूसरा तली हुई चीजें, सड़ी हुई चीजों में दो बातें, कौन सी, बीती हुई बात का चिंतन करना, नहीं सुनना सुनना नहीं, वो तली हुई चीजें, अभी हम सड़ी हुई चीजों पर है, दूसरों की कमजोरियां अवगुण देखना, धारण करना, सेवन करना, बुद्धि से स्वीकार करना, पुरानी पिछले संडे की मुरली, फरिश्ता बनने के लिए वो बीच के जो संस्कार है द्वापर से अब तक के, उसमें भी क्या था, सबसे पहला था व्यर्थ सोचना, फिर था टाइम वेस्ट करना, फिर था सुनना सुनाना, आलस से अलबेलापन, और छठवा था, और एक था ना, यही निगेटिव लास्ट था निगेटिव। ये छह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं द्वापर युग से अब तक के, तो जो ओरिजिनल संस्कार है वो मर्ज हो जाते हैं। इसके लिए फिर विधि बताई थी कि सात को इमर्ज करो, माया को समझ लो कैसे काम करती है, दरबार लगाओ, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, ये सब लास्ट संडे के मुरली में था। यहाँ बाबा कह रहे हैं सबसे पहला बीती बातों को सोचना, एक दूसरा दूसरों के अवगुण को देखना, कमियों को देखना, ये एक जैसे आदत बन जाती है, फिर बार बार वही दिखता है उसी की तरफ ध्यान जाता है, उसने वो क्या किया कितना अच्छे गुण है वो गुम हो जाता है, दिखता नहीं है, वो आदत एक बार पड़ गई तो वही देखते हैं। और तीसरा और फिर है तली हुई चीजें, तली हुई चीजें क्या करती है, आकर्षण करती है। तली हुई चीजें जैसे कौन कौन सी तली हुई चीजें हैं, पकौड़े और समोसे कचौरी और फ्रेंच फ्राइज, हाँ वो भी इच्छा नहीं होती है, दिल नहीं होती है, फिर भी थोड़ा सा थोड़ा तो खा ही लेते हैं। जित बाबा ने एक बहुत महावाक्य उच्चारण जो किया है ना, जितनी जिसमें आकर्षण ज्यादा उतना ज्यादा नुकसान, ये केवल खाने पीने का नहीं है, इसमें बहुत भयंकर महावाक्य है ये, जितना ज्यादा जो आकर्षण है उतना उससे ज्यादा नुकसान, खतरनाक है वो, जिसमें जितना ज्यादा आकर्षण। बाबा ने कहा वो इसमें उदाहरण क्या दिया, तली हुई चीज का व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, रूप कैसा होगा, रूरियान का होगा, लेन देन का होगा, पर रिजल्ट क्या होगी, गिराना, रिजल्ट क्या होगी, घृणा, घृणा, मनोरंजन के रूप से, परंतु क्या करेंगे, मन को रंज करेंगे, उदास करेंगे, दुखी करेंगे, अप्रसन्न करेंगे, डिप्रेस करेंगे, तो रंजिश, रंजिदा होना, रंज हो जाना। तो व्यर्थ सुनना और सुनाना, इसकी रूपरेखा देखो पापा ने कैसे बताया है, कहां से चालू होता है, रूरियान से, सुना है तुम आपने ये ऐसा करता है, हाँ बोलेगा मैंने भी सुना है, अच्छा ये ऐसा करता है, इसने ये किया, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा किया, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, फिर और थोड़ा बढ़ाएंगे उसको, फिर लेन देन होगी, और फिर बाबा ने क्या, रिजल्ट क्या होगा, घृणा, रिजल्ट क्या होगा, गिराना, चालू कहाँ से किया था और वो एंड कहाँ हो गया, और उसमें इतना रस है व्यर्थ में कि वो समय कितना चला गया, एक घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं। जैसे ज्ञान की चर्चा करने के लिए थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, अच्छे सुनना पड़ता है, उसके लिए सहज नेचुरल हो जाता है, इतना उस व्यर्थ बाबा ने किसी मुरली में कहा है, जो समाचार जितना दिलचस्प 95 की मुरली है वो उतना ही व्यर्थ, जितना ही जिसमें इंटरेस्टिंग न्यूज समझ लेना उसमें व्यर्थ है, चटपटी मसालेदार तेल मिर्च डाला हुआ, छौक डाला किया हुआ, बड़ा अच्छा लगता है तेल, इसके लिए बाबा ने इसको तेल बोला ना, तली हुई, तली हुई मतलब कोई भी चीज को तेल पे डालो गुजारो तो वो टेस्टी बन जाती है। चलो दो, एक चावल इधर रखा है सफेद, दूसरा इधर जीरा राइस, कौन कौन सा लेंगे, जीरा दो रखे ये लेंगे, इधर थेपला पराठे, इधर सूखी रोटी, कौन सा लेंगे, नेचुरली उधर जाती है नजर, क्यों, क्योंकि तेल से जो जाता है वो टेस्टी बन जाता है, जाते ही जितना ज्यादा वो आकर्षण महावाक्य है वह उतना ही नुकसान देने वाला। इसके लिए अगर दो व्यक्ति कहीं बैठ गए तो वहां पे व्यर्थ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, दो व्यक्ति अगर रास्ते से चलने लगे तो व्यर्थ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, दो व्यक्ति अगर खाने के लिए बैठ गए तो भी अगर व्यर्थ आने की संभावना है, अगर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो दूसरी बात है, परंतु अगर ज्ञान को छोड़ा है और चल रहे हैं तो व्यर्थ चिंतन होगा, व्यर्थ चर्चा होगी, चलो भले साथ पर अपनी अपनी मस्ती में, पर वो व्यर्थ है, एक एक सेकंड की कीमत आज पद्मों का मूल्य बताया है, ये वरदान है संगम के समय को, तो वो समय तो गया, इसके लिए वो दत्तात्रेय ने किसको गुरु बनाया, एक द्वार पर गया भिक्षा मांगने के लिए, एक कन्या थी वो धान कूट रही थी, उसके हाथों में इधर चूड़िया थी इधर चूड़िया थी, आवाज आ रही थी, उसको लगा आवाज थोड़ा कम करने की, एक चूड़ी इधर से निकाली, फिर भी आवाज आ रही, फिर इधर से निकाली, फिर इधर से निकाली, फिर एक इधर रह गई एक इधर रह गई, अभी आवाज नहीं आ रही, उसने कहा बहुत बढ़िया ये है मेरा गुरु, सन्यासी को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। यह अकेले रहने की बात केवल संगठन के विरुद्ध की बात नहीं है, ये मनसा से किसी को आधार न बनाना या किसी पे डिपेंड नहीं हो जाना, या फिर ऐसा कोई साथी ना बनाया जो व्यर्थ का साथी है, मतलब उसके मिलने के बाद बस वही चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती नहीं है, बस उससे मिल लो मतलब यहाँ क्या क्या व्यर्थ चालू है, वहां क्या व्यर्थ चालू है, इधर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वहां नीचे क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, व्यर्थ के त्रिकालदर्शी। गुरुवार को वरदान इसमें भी था ना, वरदान में तो पर ये बड़े सूक्ष्म बातें, इसको समझना है, भीड़ क्या, अकेला क्या, इसमें बहुत सारी चीजें, बाबा के एक वाक्य को समझने के लिए और 10 उसी संदर्भ में कहे हुए वाक्यों को समझना पड़ेगा समय और परिस्थिति अनुसार। तो 3 बातें हो गई, एक तो बीती हुई बातों का चिंतन जो हो गया है उसको अभी तक फुल स्टॉप, लास्ट संडे की मुरली फिर से याद करो, स्टॉप कहा और निखिलेश भाई स्टॉप हो जाए, स्टॉप कह दिया और स्टॉप हो जाए, अभी कोई उसका चिंतन नहीं, चैप्टर क्लोज। पिछले साल का सूतक इस साल में नहीं चलाओ, सूतक पता है ना? नहीं पता होगा तो ढूंढना क्या होता है। वो जो साल का सूतक है पिछला साल अभी चला गया है, उसमें जो कुछ हो गया भूल जाओ उसको, अभी नया इधर नहीं चलाना है वो सूतक, वो ढूंढना हो पापा।
शरीर छोड़ने के बाद कुछ दिन वो पालन करते बाहर नहीं जाना,
तो वो सूतक इधर नहीं चलाना इस साल में, वो हो गया पुराना साल खत्म हो गया। तो बीती बातों का चिंतन करते रहना, उसको बढ़ाते रहना, और क्योंकि उस मन में एक पैटर्न बन जाता है फिर, और उससे छूट नहीं पाता है, एक ऐसे जैसे परंपरा, जैसे बाहर की, जैसे बाबा भक्ति की परंपराओं के ऊपर चोट करते ना, ये देखो ऐसा कर रहे हैं, गंगा में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हो गया बाहर की बात है, ऐसी ही कुछ परंपरा है, प्रथा है, मन तैयार करता है और उसको लपता रहता है, उसको टंगा हुआ रहता है और सोचता है ये जरूरी है। हाँ, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको कहते हैं, एक ट्रैक बन जाता है ब्रेन में और उसको ही फॉलो करते रहता है, उसको तो खत्म करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण में वो बताते हैं, एक महात्मा जी थे, उनका बहुत बड़ा आश्रम था, तो और बहुत सारे शिष्य थे, एक दिन अचानक एक बिल्ली आ गई आश्रम में, तो महात्मा जी को भी थोड़ी पसंद आ गई बिल्ली, तो वो थोड़ा सा प्यार भी करने लगी, थोड़ा दूध भी देने लगे उसको, फिर वो जब भी ध्यान में बैठते थे वो बिल्ली उसको परेशान करती थी, कभी इधर कभी सिर पे कभी कंधे पर चढ़ जाती थी, उसने लगा अभी इस बिल्ली का क्या करूं, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा जब भी मैं ध्यान करूं बिल्ली को उसका पैर वो जो पेड़ है उससे टांग के रखना बिल्ली को, तो वो हो गया। फिर उसके बाद में महात्मा जी तो चले गए, शरीर छोड़ दिया उसका, दूसरा जो शिष्य था वो महात्मा बना, फिर वो वैसा ही बिल्ली उसको परेशान करने लगी, तो बिल्ली को फिर से जब भी ध्यान में बैठेंगे बिल्ली को झाड़ में टांग के रखेंगे, फिर उसके बाद में और कुछ समय गुजरा, ये महात्मा भी चले गए, फिर बिल्ली तो मर गई, अभी दूसरा महात्मा बने, परंतु ये फिर भी प्रथा हो गई कि जब भी ध्यान में बैठे बिल्ली को बांधो, ऐसे कई पीढ़ियां गुजरी, फिर पूछा कि भाई बिल्ली को क्यों टांगते हो, बोलते ये तो परंपरा भी चालू है। ये तो नहीं का तो प्रश्न ही नहीं है, ध्यान में जो भी बैठेगा महात्मा जी तो सबसे पहले जाके बिल्ली को टांग के आओ। हमारे मन में भी ऐसी बहुत सारी बिल्लियां टंगी हुई है, वो हमने वो कब चालू हुआ वो पता ही नहीं टंगाना। वो तो चले गए जिन्होंने किया था, वो किया था किस कारण से तब पता नहीं, पर वही हम फॉलो कर रहे हैं वही बात अभी भी। तो ये केवल स्थूल वाली बात नहीं है, ये उदाहरण केवल उन प्रथाओं के लिए नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं मन की, मन में ऐसी बहुत सारी चीजें हमने सोच रखी कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये करना चाहिए, अमृत वेला हो गया मतलब सोना बिल्कुल जरूरी है उसके बाद, नहीं तो बिल्कुल दिन में डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये बिल्कुल हमने इसको बिल्ली को टांग के रखा है एक। और नींद भी बहुत अच्छी आती है, ऐसी नींद फिर कभी नहीं आती है, इसके लिए सोना बहुत जरूरी है, बरो बोला। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते ना क्योंकि टाइम नहीं मिलता है फिर, तो ये ऐसी जो बिल्ली
जरूरी होता
है, हाँ वही, ये जो बिल्ली है बहुत सारी हमने टांग के रखी है। तो हम फिर से आते हैं, एक तो बीती बातें, दूसरों के अवगुण देखना, कुछ दिन पहले वरदान था दूसरों को के गुण देखने की उत्कंठा, दूसरों को संतुष्ट करने की उत्कंठा होकर होगी तो एकरस उत्साह होगा और क्या बन जाएंगे, एकरस उत्साह और गुणमूर्त बन जाएंगे। अगर दूसरों के अवगुण देखोगे, कब देखते हैं, उत्साह कम कब होता है, उसका कारण बताया था वरदान में, जब किसी के भिन्न भिन्न स्वरूप और भिन्न भिन्न बातें देखते और सुनते हो तब उत्साह कम होता है। हाँ, तो भावना बदल जाती है, दूसरों के भिन्न भिन्न स्वरूप देखना और भिन्न भिन्न बातें सुनना, इससे उत्साह कम हो जाता है। बाबा ने कहा इसके लिए गुणों को देखना, गुणमूर्त बनेंगे और एकरस उत्साह रहेगा। वरदान था अभी कुछ समय पहले, यही हफ्ते में, दो तीन दिन पहले ही। तो गुणों को देखना ये बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि ये आत्मा ऐसी है पर इसमें कुछ तो है, क्या है वो अच्छे गुण, वो थोड़ा लिखने। तो अगर यहाँ पर ही बैठ के हम अगर बोले लिखो सबके गुण, अवगुण लिखो, तो फटाफट 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 50 लिख देंगे। अभी गुण लिखो, 3-4 लिखे, अभी क्या है भी क्या कुछ, 3 तो लिख देती कि बाबा का बच्चा बन गया, पवित्रता, ये हो गया, वो हो गया, बस आप आगे आगे कुछ मिलते ही नहीं, ढूंढना पड़ता है। अवगुण को सोचने की जरूरत ही नहीं है, अवगुण में तो बस ये देखो, अमृत वाला उस दिन सो रहा था फटाफट, उस दिन बात कर रहा था, उस दिन मोबाइल बजा बहुत धड़ एक के बाद एक, ये आदत पड़ गई, एक नया पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। होमवर्क दिया है बाबा ने, नया नवीनता, ये एक नवीनता है गुण देखना। फिर उसके बाद में ये खाना पीना हो गया, उसके लक्षण क्या बताया बाबा ने, चढ़ नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, चढ़ाई नहीं चढ़ सकता है, सेट नहीं हो सकता है, कहीं सहारे की आवश्यकता होती है, वो चढ़ती कला में कभी जा नहीं सकता है, किसी न किसी का माया के वश हो जाते हैं, थकता है, रुकता है, सांस फूलती तो नहीं कहा पर थकता है, रुकता है और सहारा लेना पड़ता है, सहारे के बिना कोई चल नहीं सकता है, उसको सहयोग चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, कुछ दिन वरदान में भी था, ये सब चीजें चाहिए उसको। अब बाबा ने कही है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट है दो, एक तो एक्सरसाइज और दूसरी परहेज डाइट। तो डाइट का वही, वो जो दो चीजें सड़ी हुई और तली हुई, वो भी इतना आसान नहीं है। अच्छा, डाइट का क्या संकल्प किया है नए साल में वो बताओगे, वो हमने संकल्प तो बहुत सुना है 3 दिन, पर डाइट के विषय में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक चल रही है उसके ऊपर भी सोचना, डाइट में क्या नवीनता लानी है, कि जो डाइट ले रहे वो ठीक है या कुछ छोड़ना भी है उसमें से, कि बस वही चलना है या उसमें और एडिशन करना है 2-3, ये भी एक सोच चिंतन का विषय है। तो डाइटिंग और एक्सरसाइज कौन सी बताई बाबा ने, चार स्वरूपों का अभ्यास, अभी अभी कर्मयोगी, साकार स्वरूपधारी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, आकारी स्वरूपधारी, अभी अभी परम नामवासी और अभी अभी वैकुंठवासी, ये चार स्वरूपों का अभ्यास ये करते रहो तो क्या हो जाएगा, हल्के एकर स्थिति, दौड़ने लगेंगे, बाप की छत्र छाया का अनुभव, ये भी बोला है, जब हल्के हो जाएंगे तो बाप की छत्र छाया का अनुभव होगा, हाई जंप लगाएंगे, दौड़ेंगे नहीं, हाई जंप लगाएंगे, और ऐसी जो आत्मा है वो आत्मा है महारथी, वो आत्मा है वेटलेस, वो आत्मा है परिस्थान में रहने वाली, वो आत्मा है दिल तख्त नशीन, वो आत्मा है वो जो मौन में रह सकती है, मन का मौन स्वतः ही सदेगा यहाँ पर, वो ही आत्मा है जो संगठन में उड़ने वाली है, और उन्हीं का यादगार चित्र है कौन सा, गोपी वल्लभ का, गोपी का, हर एक गोपी को क्या लगता है ये मेरा गोपी वल्लभ है, उसी तरह हर एक आत्मा का, हर एक बच्चे का बाप पर पूर्ण अधिकार है। कितना अच्छा वाक्य बोला बाबा ने, देखा, हर एक बच्चे का बाबा पर पूर्ण अधिकार है। तो हल्कापन, महारथी अर्थात वेटलेस, बोझ नहीं, भार नहीं, निर्भार, निर्बोझ, बोझ रहित, भार रहित अवस्था, ये सारी बातें जब ये व्यर्थ चला जाएगा तो स्वतः ही स्थिति ऊपर जाएगी, जिसी को बाबा ने महारथी कहा, परिस्थान कहा। दो पंख मिलेंगे उनको, कौन से, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान अर्थात यहाँ योग, ज्ञान और विज्ञान के दो पंख मिल जाएंगे उनको, उससे वो उड़ते रहेंगे। फिर से आ जाओ इधर, फिर है नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हो गया वजन का, फिर है वेस्ट, वेस्ट अर्थात व्यर्थ, एक व्यर्थ उधर भी आ गया, व्यर्थ सुनना सुनाना, ये व्यर्थ भी आ गया, परंतु वो व्यर्थ था, वो संज्ञा थी, नाउन, ये जो व्यर्थ है ये क्रियापद है, क्रिया व्यर्थ गवाना अर्थात ये क्रिया है, नाउन वर्ब है यहाँ पे, वो जो व्यर्थ था वो नाउन था उधर, या संज्ञा नाम, तो वो व्यर्थ। दूसरा ये व्यर्थ अर्थात व्यर्थ गवाना, किसको गवाना, खजानों को गवाना। सबसे चार खजानों की चर्चा की है, ज्ञान संकल्प उसका कोई बाबा ने विस्तार किया नहीं, स्थूल धन का थोड़ा सा विस्तार किया, यहाँ का एक रुपया एक नया पैसा क्या हो जाएगा, रतन के समान रतन बन जाएगा। और सबसे ज्यादा जो विस्तार जिस चीज का किया है वो किया है समय, क्या क्या कहा समय के लिए, बहुत सारे अलग अलग शब्दों में व्यर्थ की कितनी चार पांच परिभाषा दे दी है वहां पे। सबसे पहली परिभाषा अमूल्य वस्तु जो है उसका मूल्य न रखना, वस्तु तो खरीद ली पर वैसी पड़ी है, ना तो खुद यूज किया ना दूसरों को दिया, वो भी वेस्ट है। सबसे पहली पहली परिभाषा है। दूसरा लाभ ना लेना, कार्य में न लगाना, ये भी वेस्ट है। वरदान जो प्राप्त हुए है खुद के लिए जमा भी नहीं किया और दूसरों का दान भी नहीं किया, ये भी व्यर्थ है। वरदान जो प्राप्त हुए है अपने लिए कार्य में लगाए ना दूसरों के लिए कार्य में लगाए, ये भी व्यर्थ है। तो लाभ ना लेना, कार्य में ना लगाना, यूज ना करना, मूल्य को न समझना, ये अलग अलग परिभाषाएं दी है बाबा ने। हाँ देना नहीं, ये भी क्या, अभी इतनी पालना दी अभी देना भी तो पड़ेगा। तो 21st तो ये सारा व्यर्थ है। तो समय के लिए बाबा ने क्या कहा, ये समय की मूल्य कितना है पदम, और संगम युग का वरदान है इस समय का। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये पांचवी बात है मुरली की। एक तो बीती बातों का चिंतन नहीं, दूसरी बात अवगुण नहीं देखना, तीसरी बात व्यर्थ समाचार सुनना नहीं, उसके बाद चौथी बात रूहानी एक्सरसाइज, और पांचवी बात ये टाइम वेस्ट न करना। क्योंकि जैसे अभी लहरों में डूबते हुए वो जो आत्मा को तिनके का सहारा होता है, एक समय आएगा कि दुख की लहर ऐसी आएगी कि फिर वो तड़पती हुई आत्मा तुम्हारे सामने आएगी। इसके लिए खुद खजानों से अभी संपन्न बनो तो कायम रहेंगे और उनको भी संपन्न बना सकेंगे, वरदान में है आज ना, तो वो खजाने अपने अंदर भरना है। और संकल्प एक खजाना, यहाँ जो बात चल रही है समय, टाइम वेस्ट, दो लोग अगर बैठ जाए तो कितनी बातें चलती है, दो लोग अगर घूमने चले जाए तो कितनी यहाँ वहां की बातें चलती है, दो लोग अगर खाने में बैठ जाए तो कितनी बातें चलती है, टेबल टॉक, ये बाबा की महावाक्य है टेबल टॉक, एक मुरली में बोला है। और समय कितना व्यर्थ चला जा रहा है, मोबाइल टीवी इंटरनेट, ये छोड़ के कहाँ जा रहा है ब्राह्मणों का समय, मोबाइल छोड़ के और कहाँ वेस्ट हो रहा है, भोजन घूमना फिरना और नींद, अच्छा कोई ज्यादा भी नींद करते हैं। कितना सारा खजाना हमारे पास लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, कितने सारे ज्ञान अमृत है, कितनी सारी अव्यक्त वाणी है, कितनी सारी मुरलियां है 69 से लेकर अब तक के, उस ज्ञान अमृत में कितने लोगों के कितने सारे अनुभव है, सारे हो गए पढ़ के। फिर
जो रेगुलर वाला वही नहीं पढ़ना होता,
टाइम चुराना पड़ेगा, समय को चुराना होता है, इधर उधर से निकालना होता है। पहले तो लीकेजेस जो हो रहा है ना, कहाँ वेस्ट हो रहा है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है हृदय में अगर देखो कि कोई दो लोग बैठे हैं और व्यर्थ की चर्चा कर रहे हैं, बहुत पीड़ा होती है। ये जो दृश्य है, कोई चल रहे है और व्यर्थ की बातें चल रही है, कोई भोजन कर रहा है और व्यर्थ की बातें कर रहे है भोजन करते करते। ज्ञान की चर्चा करें वो भी ठीक है, परंतु व्यर्थ का चल रहा है, किसने क्या किया, क्रिकेट में क्या हुआ, ये सीरियल में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, अब क्या होगा, टेम्परेचर अभी कितना है, कल कितना था, आज सुबह कितना है, भालू कहाँ दिखा, काला था पीला था नीला था, कौन से रंग का था, किस कैटेगरी में है, ये सब व्यर्थ की श्रेणी में आता है। ये सब तुम्हारी बुद्धि में केवल ज्ञान ही होना चाहिए और उसी का चिंतन होना चाहिए, उसी की चर्चा होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब व्यर्थ है। वो बुद्धिमानी नहीं है इस समय वो सब करना, संसार के लोग भी वही सब कर रहे हैं, फिर तो फिर हमारे और उनमें क्या अंतर। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, पद्मों की कमाई का वरदान अब है, पद्मों का मूल्य, एक बोला मूल्य, दूसरा जगह कहा कमाई। इसके लिए समय को, ऐसा नहीं हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो कोई बुरा भी नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया, परंतु जमा नहीं किया ये भी व्यर्थ है। ये भी आया है ना मुरली में, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने किसी के साथ खराब नहीं किया, अरे परंतु उस समय को सफल कितना किया, कोई वाली बात है पालना वाली, पालना ही ले ही रहे, ले ही रहे, ले रहे, देंगे कब, तो वेस्ट ना जाए कहीं पर भी। और अभी जो लेटेस्ट जो है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वो है व्हाट्सएप, फॉरवर्ड इधर से उधर, फॉरवर्ड इधर से उधर, फॉरवर्ड ये मेल इधर, वो मेल उधर, और हम ये सोच के कि भाई उसके काम आएगा, पर वो भी क्या कर रहा है, फॉरवर्ड, वो कोई पढ़ थोड़ी रहा है। आपको अगर लग रहा है कि वो कोई पढ़ेगा, ये क्लास बहुत अच्छा है, इसने सुनना ही चाहिए ये क्लास, उसको भेजा, उसने देखा अच्छा है और तुरंत फॉरवर्ड, सुना कहा फॉरवर्ड, उसने भी माया है, वो भी हमारा जो संकल्प उसमें खींचते हैं ना संकल्प, जहां पर भी हमारी दृष्टि जाएगी वहां संकल्प जाते हैं, खींचता है वो।
भाव तो कल्याण का होता है,
कल्याण का भाव है, वही ना कहा ना हमने तो किसी को बुरा भी नहीं किया, अच्छा, परंतु जमा कितना किया, वो वाली बात है उसमें। तो वो एक, फिर उसके बाद में यहां मुरली पूरी हुई, फिर दादियों का वो वेट का तो बोल दिया, महारथी का, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो साथ जो महारथी है वो सदा साथ रहने वाले, किनारे वाले नहीं, वो महारथी होंगे वो अभी पकड़ा अभी छोड़ा ऐसे नहीं, वो तो भक्त जो है कि किनारे में, बाप जैसे तुम्हारे सम्मुख है वैसे हर बच्चा भी बाबा के सम्मुख है, ये एक महावाक्य वहां पर है। और फिर है सेकंड पैराग्राफ, वो है क्या करो, इन्वेंशन करो, स्पिरिचुअल रिसर्च, ऐसा कोई रिसर्च ग्रुप बनाओ, बाबा ने कहा, कौन सा रिसर्च करो, जैसे कि साइंस वालों का उदाहरण दिया है, वो दुख कम करने के लिए ऐसा पुरुषार्थ का साधन, एक शब्द ये बोला है, दूसरा बोला है कि साइलेंस का साधन, अनुभव का साधन, ये तीन शब्द उसमें है, ऐसा कोई साधन बनाओ कि जिससे सफलता ज्यादा, मेहनत कम, अनुभव ज्यादा और साधना कम हो। वो जैसे क्या करते हैं, विधि एक सेकंड में विधि में लाते हैं, वैसे तुमको भी सिद्धि प्राप्त करना है, सिद्धि ज्यादा हो, जैसे वो प्रयोगशाला में लाते हैं तो तुमको भी प्रयोग करना है, ये सब बातों का। तो ऐसा कोई साधन निकालो, बाबा ने कहा, वो मौन का उसका उत्तर वहां पर है, जैसे पहले मुख का मौन था उससे टाइम बच गया और फ्री हो गए, दो चीजें हो गई, वैसे यहाँ पर मन का मौन, मन का मौन अर्थात व्यर्थ संकल्प उसमें आए नहीं, वो आए कब नहीं, जब वो वेट वाली जो चीजें है, तली और सड़ी हुई चीजें नहीं खाओगे तब इधर, क्योंकि जब व्यर्थ सुन लिया तो व्यर्थ चलेगा, बीती के बाद तो चिंतन कर रहे तो व्यर्थ आएगा, तो मन को ही मौन कर देना तो टाइम भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा। कभी सूरज भाई ने सुनाया था ना, एक बार कभी मौन किया था यहाँ पर तो ऐसे लगा तो वहां पर कितना टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है, हाँ। तो जब भी आत्मा मौन में जाएगी उसमें दिव्य शक्तियां प्रकट होना चालू होती है। आध्यात्मिक मार्ग में बिना मौन और एकांत के कुछ भी करो उन्नति नहीं होती, चाहे हजार क्लासेस सुन लो, हजार किताबें पढ़ लो, जब तक आत्मा मौन में नहीं जाती है और एकांत का सेवन नहीं करती है उसकी उन्नति नहीं होती है, उसको दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है। अंदर दिखने के लिए मार्ग उस तरह का मार्ग नहीं है ये संसार का। यहाँ तो जितना मौन, द ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, द हाईएस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट साइलेंस आर फेड। विवेकानंद ने कहा है कि सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ आती है, जब सबसे ज्यादा मौन हो तब। तो मौन का बहुत महत्व है। और बाबा तो ये केवल मुख का नहीं, मन का कह रहे, पर मुख का भी अगर कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुख का मौन, मन का मौन, समय बच जाएगा और क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, फिर सफलता ज्यादा होगी, सिद्धि होगी, एक सेकंड में विधि को प्राप्त होंगे, ये सारी बातें वहां पर हो जाएंगी, यही है महारथी। और लास्ट में और क्या कहा, पर ऐसा जो है ना, एक है सुनाना एक बात है, समझना एक बात है, या वर्णन करना एक बात है, परंतु प्रैक्टिकल में करना वो अगर करोगे तो फिर योग लगेगा। और एक चीज और बोलिए, ऐसा जब मौन होगा तब सेवा शुरू होगी, ये भी बोला है उसने। ये जो सेवा है ना, ये बड़ी सूक्ष्म सेवा है, मन की मनसा से, शुभ भावना से, ये सबसे सूक्ष्म सेवा है और यही सबसे शक्तिशाली सेवा है। तो यहां पर मुरली पूरी होती है। वरदान शायद बोल दिया। स्लोगन शिक्षा कैसी करो, दो जो दिल को लगे, कैसी कल शुभ भावना कल्याण की भावना अगर हो तो शिक्षा दिल से लगेगी। और पांच मिनट में अभी जो 31st की जो मुरली चली उसकी कुछ पॉइंट्स, जो कुछ तो बोल दी पर जो रह गई है वो बताओ। दिल के दुलारे बाप दिल के दिलारे दुलारे बच्चों से देख रहे हैं और बाबा के नैनों में हरेक बच्चा समाया हुआ है। क्यों समाया, क्योंकि हरेक में विशेषता है। और हर हर भाई या बहन दोनों बड़े काम के हैं। और माताओं के लिए क्या कहा, माताएं भी इन्वेंशन निकालती है, चतुराई करती है और तरीके खोजती है, तो बाबा को भी, बाबा भी एंजॉय करता है, बाबा को भी लगता है ये माता यहाँ आ कैसे गई। हाँ विजयदाता बाप साथ है तो विजय कहाँ जाएगी। खुश अब नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे, 14th अक्टूबर की मुरली के महावाक्य भी है इसी तरह के। 14th अक्टूबर में फिर से माताओं को याद किया था, युगलों को भी साथ में लेके आएगी, अकेले थोड़ी जाएगी, अभी भी माताओं को फिर याद किया। माताएं ब्राह्मणों की सेवा करती है, बहने दोनों भी कम नहीं है पर भाई गुप्त है। और प्रेम के आधार, प्रेम के नाते से, ये प्रेम के नाते से खुश है या ज्ञान के नाते से खुश है, तो बाबा ने कहा ज्ञान के नाते से खुश है, प्रेम के नाते से नहीं, विदेशियों से मुलाकात, लास्ट लाइन। और मेरा बाबा मेरे को मेरे से मिल गया। अब खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे, जब बाप जहाँ बाप है वहाँ कोई भी बात आ नहीं सकती। लास्ट फर्स्ट मुरली सीजन की, ये सब महावाक्य है, ये सब पता रहना चाहिए। उसमें वो दो, इसमें अभी ये विजयदाता साथ है तो विजय कहाँ जाएगी, मेरा बाबा मेरे से मिल गया। और चेहरा खुशनुमा होना चाहिए और मन की मौज हरेक के चेहरे पर क्या दिख रहा है, खुशी की लहर, शक्ल में खुशी की लहर, नैनों से क्या दिख रहा है, बाप और बच्चे के मिलन का आनंद दिख रहा है। और ये बाबा का स्वरूप कौन सा है, भोले भंडारी का स्वरूप है, अभी अभी याद किया और अभी अभी प्राप्ति है। और आत्माएं चमक रही है, अच्छा। और हर एक के मन में बाबा बाबा, इसके लिए धुन चल रही है बाबा, इसके लिए गीत चल रहा है, हर एक से मुख से बाबा बाबा निकल रहा है और बाबा के दिल से भी दिन रात बच्चे ही बच्चे हैं। बाबा भी खुश है, डबल हाथ का हाथ उठाए तो, दोनों हाथ उठाए तो बाबा को ये अच्छा लगता है। यहाँ आके देखो और बच्चों के बिना बाप को सुना सुना लगता है वो 14 अक्टूबर, ठीक है। और भी कोई पॉइंट है, ये संगम का श्रेष्ठ मिलन है, वो ये सारे मिलन की महिमा की, बाबा ने अमूल्य ऐसा है वैसा है, साकार का मिलन है, सम्मुख का मिलन है। आप पीछे वाले कोई कुछ भी दिख नहीं रहा है, अरे ज्ञानी भाई है ना, बहुत दिनों बाद दिखे मुझे। हाँ बाबा पीछे वालों को देख रहे हैं और जो पहले पीछे वाले। संजय भाई, आशीष भाई क्या बोला, और राजकुमार भाई और क्या बोला, हाँ रियल अनुभव जो होगा ये भाग्य की बात है। यहाँ तो भाग्य बहुत सारे हैं परंतु रियल अनुभव हो ये भाग्य की बात है, इसलिए बाप दादा अव्यक्त मिलन का अनुभव करा रहे हैं, परंतु वो भाग्य की बात है, इस भाग्य को बढ़ाते रहो। ये भाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है ये मिलन, ये मिलन एग्जाम्पल है, ये मिलन अमूल्य, ये मिलन महान है, ये मिलन न्यारा प्यारा है, ये मिलन वंडरफुल है, ये मिलन साधारण बात नहीं है, ये मिलन ये अचानक ही लॉटरी है, स्वप्न में नहीं सोचा था, कभी सोचा नहीं था, ये गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है सबको ये मिलन। और दिल में छप जाना चाहिए, दिल में समा जाना चाहिए, जब सोचो इमर्ज करो तो सुख की फीलिंग हो जाएगी। और होमवर्क दिया कि ये मिलन निरंतर अनुभव करते रहो, दिल में देखते रहो बार बार, ये होमवर्क है, जैसे अभी भी हो रहा है ये मिलन, ये एक होमवर्क। और दूसरा मिलन और दूसरा होमवर्क है नवीनता, जो लास्ट में कहा, याद प्यार, याद प्यार तो नहीं कहेंगे वो जो लास्ट में है, याद प्यार देंगे, रुको पहले बात करने दो। क्या कहा, वेट लेट मी टॉक, चाहे कोई भी आ रहा है, माताओं को छोड़ा ही नहीं आखिर तक, वो आ गए, एक लाइन उनको बोला बाजू में, फिर से माताओं के ऊपर, वो दूसरे आए उनको हटाया, फिर से माताओं। लास्ट तक माताओं को पकड़ के रखा बाबा ने। शक्ति सेना बाबा ने क्या कहा, शक्तिशाली है माताएं, वाह माताएं वाह, जैसे वाह बहादुर बच्चे वाह, जैसे कोई प्यासी है और उसको पानी मिल जाए तो वो पानी भी उसे अमृत की तरह लगता है। कैसे अच्छा अच्छा वो युक्तियाँ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अरे मार भी करे, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। और वाह रूहानी नजर, वाह वाह बाप का, वाह वहाँ आपका दुलार, वहाँ नुहारी नजर, वहाँ नैनों का मिलन।
इसके लिए हमने प्राइस ने नेक्स्ट डे क्लास में अनुरोध सुनाया, एक माता जी की आई थी, उन्होंने अम्बा जी का मेला लगाया।
हाँ तो तीर्थ
बाबा जब जाने लगे तो बाबा ने बोला क्या बोल गए थे, बोले अम्बा जी जा रहे हैं ऐसा बोल गए थे, तो बाबा ने अम्बा जी किसी भाई को फोन किया, बोले वो कुमकुम प्रसाद ले गए उसको दे।
तो बाबा मतलब कितनी उसकी सूक्ष्म दृष्टि है, सब कुछ देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पांडव भी भाई गुप्त है बाबा ने कहा, वो भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, कम कौन है फिर, कोई भी कम नहीं है, सब एक दो से आगे है।
ट्रेन वाला की, ट्रेन की टिकट अभी पता नहीं वापिस
जाए, हाँ वापिस जाएगी, ये है निश्चय, इसको ही निश्चय कहा है बाबा ने, पता नहीं आएंगे पर आ जाते हैं, बाबा को वंडर लगता है। तो इस मुरली को फिर से पढ़ना, फिर से इसमें से मुख्य पॉइंट्स निकालना और बहुत सारी बातें याद रखने की कोशिश करना और उसका स्वरूप मिलाने की कोशिश करना, ये नए साल का होमवर्क है। अच्छा ओम शांति।